From the conference center at Temple Square.
सॉल्ट लेक सिटी में टेंपल स्क्वायर स्थित सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन का रविवार सुबह का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। यह प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार हेनरी बी आयरंग इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you.
बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 128वें वार्षिक महासम्मेलन में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम विश्व भर में गिरजे के सदस्य और मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं जो इन कार्यवाहियों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता का, जो इस उपस्थिति में है, का कृतज्ञता से अभिनंदन करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मॉर्मन टेबरनेकल गायन मंडली मैक विलबर्ग और रायन मॉर्फी के निर्देश द्वारा एंड्रियो अंसरमन के साथ क्लेस क्रिस्टेंसन ऑर्गन पर दिया जाएगा। गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ लेट जायन इन हर ब्यूटी राइज द मॉर्निंग ब्रेक्स गाकर कृतज्ञ से अभिनंदन करते हैं। प्रारंभिक प्रार्थना इसके पश्चात एल्डर एंथनी डी पर्किंग द्वारा की जाएगी और गायन मंडली आई विल फॉलो गॉड्स प्लान गाएगी।
Jesus. Our Father who art in heaven, we are grateful to be gathered.
स्वर्ग के पिता, हम आपके धन्यवाद हैं यहाँ पे एकत्रित होने के लिए. आज यहाँ पे हम पुनः सुबह चाह के पुनः स्थापना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपके बेटे और आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं और जोसेफ स्मिथ के लिए भी और जो पुनर्स्थापित सुसमाचार हमें दिया गया उसके लिए धन्यवाद देते हैं और जो फरिश्ते स्वर्ग से आए थे उनके लिए आपके लिए धन्यवाद देते हैं और जो सच्चाई जो हमें बुक ऑफ मॉर्मन के द्वारा मिली है उसके लिए भी अभ्यास और उनके पश्चाताप के लिए करते हैं. आज आपके करोड़ों भाई बच्चे आपके मीटिंग हाउस में बैठे हुए हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं. परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीषित कीजिए जो भी इंच बने हैं और प्रेजेंट थॉमस स्पॉन्सन के साथ में हो और उनके साथ में हो ताकि उस प्रकार से हमारे संदेशों को दिया जाए जैसे बेंजामिन के समय में दिया गया था और हमारे अंदर पूरा काम करने की कोई भी इच्छा पैदा ना हो. हम आपकी आत्मा का निमंत्रण देते हैं और जो विश्वास करते हैं जिनका विश्वास मजबूत नहीं है उनके विश्वासों को मजबूत कीजिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दें जो अपने प्रश्न का उत्तर पाने का थे और अपने जीवन में आपकी आज्ञा का पालन कर सके. हम की आपकी आशीषों की मांग करते हैं परमेश्वर. आपके पुत्र के प्रायश्चित के लिए धन्यवाद देते हैं. हम उसके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन.
It will now be our privilege.
अब हमारा अवसर अपने भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन को सुनने का होगा. अध्यक्ष मॉन्सन की टिप्पणी के बाद गायन मंडली यू कैन मेक द पाथवे ब्राइट गाएगी. उसके पश्चात हम बहन बॉनी और ऑस्करसन युवती के जनरल अध्यक्षता से सुनेंगे. उसके बाद बिशप डब्ल्यू क्रिस्टोफर वॉल्ड्रिल अध्यक्ष द्वारा
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, नियमानुसार संदेश शुरू करने से पहले मैं चार नए मंदिरों की घोषणा करना चाहता हूं, जो आने वाले महीनों और सालों में आएंगे, निम्न जगहों पर बनाए जाएंगे। क्वीटो, इक्वाडोर, राये सिंदाबावे, प्रेम ब्राजील, लीमा पेरू। जब मैं 1963 में 12 प्रेरितों के परिषद का सदस्य बना था, वहां पर 12 संचलित मंदिर संपूर्ण गिरजा में थे। दो सप्ताह पहले प्रोवो सिटी सेंटर मंदिर का समर्पण के साथ यहां पर 150 संचालित मंदिर पूरे संसार में हो गए थे। हम इतने आभारी हैं आशीषों के लिए हम इन पवित्र घरों में पाते हैं। अब भाइयों और बहनों, मैं अपने कुछ विचारों के इस सुबह आपके साथ बांटने के अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हाल ही में विकल्पों के बारे में सोच रहा था। यह कहा गया कि इतिहास के दरवाजा घूमकर छोटा सा फंदा हो जाता है, और ऐसे ही लोग जीते हैं। हमारे चुनाव हमारी नियति निर्धारित करते हैं। जब हमने आत्मिक संसार को छोड़ा था और नाश्वरता में प्रवेश हुए, हम अपने साथ स्वतंत्रता का उपहार लाए थे। हमारा उद्देश्य सेलेस्टियल महिमा के पाना है, और बड़े पैमानों में हम विकल्प करेंगे। निश्चित करता है हम चाहे लक्ष्य पर पहुंचेंगे। वंडरफुल। आपको याद होगा कि वह दो रास्तों के सामने खड़ी थी। प्रत्येक अपनी ओर खींच रहे थे, परंतु विपरीत दिशा में। जैसे वह चिंतित करती रही कहां में मोड़ना है, चेजायर बिली से विवाद करती है। एलाइस ने मुझसे पूछा, किस पथ पर मैं जाऊं? बिल्ली उत्तर देती है, वह निर्धारित होता है कहां तुम्हें जाना है। अगर तुम नहीं जानते कहां तुम्हें जाना है, इसका कोई अर्थ नहीं कौन सा रास्ता तुम लेती हो। असंभव लाइफ हम जानते हैं कहां हमें जाना है, और ये मतलब रखता है हमें किस ओर जाना है। जिस रास्ता का हम इस जीवन में अनुसरण करते हैं हमें हमारे अगले जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाता है। हम चाहे अपने भीतर विश्वास को एक बड़ा और शक्तिशाली चुनाव कर बनाएं, जो कि हमारा अति प्रभावशाली विपत्ति के विरुद्ध हिफाजत करने वाला है। एक असल विश्वास उस तरह का विश्वास जो हमारा समर्थन करता है और हमारी अभिलाषा सही का चुनाव करो का आधार है। ऐसे विश्वास के साथ हम नहीं जाते, इसके साथ हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। यद्यपि यह विश्वास है कि हमें बुद्धिमानी से चुनाव करना है, ऐसे कई समयों में जब हमने मूर्खता वाले विकल्प लिए होंगे, पश्चाताप का उपहार हमारे उद्धारकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है। अपने को कई बातों में सुधार कर सक्षम करें कि हम रास्ते पर लौट आए, जिससे कि हम सेलेस्टियल ग्लोरी की ओर चले जिसे हम ढूंढते हैं। हम शायद अपेक्षा के अनुकूलता के प्रोत्साहन को बनाए रखें। हमें कभी कठिन सच का विकल्प लेना चाह के बावजूद आसान गलत का। जैसे हम निर्णय को ध्यान से लेते हैं, हम हर दिन अपने जीवन को बनाते हैं, चाहे इसका चुनाव करें या उसका चुनाव। यदि मसीह को चुनते हैं तो सही चुनाव करेंगे। कि यह हमारी हमेशा हार्दिक का विनम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता, आमीन।
Sunshine.
On March 30th, just 1 year ago,
मार्च को साल भर पहले एक दो साल का छोटा बच्चा इथान कनेसेका अमेरिकन फोर्क यूटा से निमोनिया और गुर्दों में पानी भरने की वजह से अस्पताल में दाखिल हुआ था। दो दिन पश्चात उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी कि उसे हेलीकॉप्टर से सॉल्ट लेक शहर के बच्चों के अस्पताल में ले जाया गया था। उसकी माँ मिशेल को सामने की सीट पर बैठाकर बेटे के साथ ले जाया गया था। उसे बात करने के लिए एक हेडसेट दिया गया ताकि वह हेलीकॉप्टर में दूसरों से बात कर सके। वह सुन सकती थी कि चिकित्सक उससे बीमार बच्चे पर काम कर रहे थे और वह खुद भी पीडियाट्रिक नर्स है। मिशेल जानती थी, इतना समझ रही थी कि इथन की स्थिति बहुत गंभीर है। इन गंभीर क्षणों में मिशेल ने ध्यान दिया कि वे सीधे ड्रैपर यूटा टेम्पल के ऊपर से उड़ रहे थे। ऊपर से उसने उस पार घाटी के पार भी देखा कि जॉर्डन रिवर टेम्पल, ओकरा माउंटेन टेम्पल और यहाँ तक सॉल्ट लेक टेम्पल कुछ ही दूरी पर थे। उसके मन में विचार आया, क्या तुम विश्वास करती हो या नहीं? उसने इस अनुभव के लिए कहा, मैंने सीखा था मंदिर के आशीषों के बारे में प्राथमिक और युवतियों में कि परिवार सदैव साथ हैं। मैंने मेक्सिको में अपने मिशन पर अच्छे परिवारों से संदेश बांटा था। मैं अपने अनंत साथी के साथ मंदिर में सारी अनंतता के लिए मोहर बंद हो गई थी। मैं युवतियों के मार्गदर्शक के रूप में परिवारों के बारे में अध्याय लिए थे और मैंने परिवार संध्या में बच्चों के साथ सदैव परिवारों की कहानियां सुनाई थी। मैं जानती थी, लेकिन क्या मैं विश्वास करती थी? मेरा जवाब जल्द से जल्द आया, जैसे प्रश्न मेरे दिमाग को फाड़ देगा। आत्मा ने मेरे हृदय को पुष्टि की और मन को जवाब में पहले से जानती थी, क्या मुझे उसमें विश्वास है? उस क्षण मैंने मेरे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना में अपना हृदय निकाल दिया, उनका धन्यवाद किया। ज्ञान और भरोसा मेरे पास था कि परिवार सच में हमेशा से हैं।
मैं उसके पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जिसने इस सबको संभव बनाया था। मैं उसका अपने बेटे के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं मेरे स्वर्गीय पिता को बताना चाहती हूँ यदि वह मेरे नन्हे बेटे ईथन को उसके स्वर्गीय घर में वापस लाने की जरूरत है तो यह ठीक है। मैं अपने स्वर्गीय पिता पर पूरा विश्वास करती हूँ और जानती थी कि मैं ईथन को फिर से देख सकूंगी। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन गंभीर क्षणों में मेरे पास ज्ञान था और भरोसा कि सुसमाचार सत्य है। मेरे पास शांति थी। ईथन कई हफ्ते अस्पताल में बिताए विशेषज्ञ से चिकित्सा लेता रहा। प्रार्थना, उपवास और प्रियजनों का विश्वास सब साथ थे। उसका ध्यान रखने में अस्पताल से जाने की अनुमति मिल गई और वह अपने परिवार के साथ घर लौट गया। वह स्वस्थ है और आज अच्छा है। इस परिभाषित क्षण को ने मिशेल को पुष्टि दी थी कि सारा जीवन उसने जो कुछ सीखा था वो सब शब्दों से अधिक था। यह सच है। क्या हम कभी कभी आशीषों के आदि हो जाते हैं जो हमें अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा घर के सदस्य के रूप में दी जाती है कि हम पूरी तरह से चमत्कार को और प्रभु के शिष्यता के गौरव को गिरजा में समझने में असफल हो जाते हैं? क्या हम कभी इस जीवन में दिए गए महानतम उपहार के विषय में असावधानी बरतने के दोषी हो सकते हैं? उद्धारकर्ता स्वयं सिखाता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और अंत तक रहोगे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा जो कि उपहारों में महानतम परमेश्वर का उपहार है। हम विश्वास करते हैं कि यह गिरजा रविवार को जाने से कहीं अधिक अच्छी जगह है और सीखने की कैसे हम एक अच्छा व्यक्ति बने। यह प्यारे से क्रिश्चियन सोशल क्लब से कहीं अधिक है जहां पर हम अच्छे नैतिक स्तर वाले लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। यह न ही सिर्फ कुछ अच्छा सुझाव है कि अभिभावक अपने बच्चों को घर में सिखा सकते हैं ताकि वे जिम्मेदार अच्छे लोग बन सके। अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर इन सब बातों से कहीं अधिक है। एक मिनट के लिए उस गहन दावे के बारे में सोचें जिसे हम धर्म बनाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वही यीशु मसीह के गिरजे की स्थापना पृथ्वी पर दोबारा से पुनर्स्थापित परमेश्वर के बुलावे पर भविष्य वक्ता हमारे समय में की गई थी और कि हमारे मार्गदर्शकों ने वही सामर्थ्य और परमेश्वर के नाम में काम करने का अधिकार धारण किया है जो कि प्राचीन में प्रेरितों के पास था। इसे परमेश्वर का पौरोहित्य कहते हैं। हम इस पर दावा करते हैं इस पुनर्स्थापित अधिकार के द्वारा हम बचाव धर्म विधियां जैसे कि बपतिस्मा और शुद्धता का आनंद लेते हुए और हर समय हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा का उपहार है। हमारे पास प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं। इस गिरजे को मार्गदर्शन करने और निर्देशन पौरोहित्य कुंजी के द्वारा करने के लिए और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों से इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। हम विश्वास करते हैं कि पौरोहित्य शक्ति अनुबंध बनाना संभव करता है और पवित्र मंदिर में धर्म विधियां ग्रहण करना कि किसी दिन परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लौटना संभव होगा और उसके साथ सदैव रहेंगे। हम यह भी दावा करते हैं कि सामर्थ्य से परिवार सारी अंतता के लिए एक साथ हो सकेंगे जब दंपति नई और हमेशा के लिए पवित्र भवन में विवाह अनुबंध में प्रवेश करते हैं और विश्वास करते हैं सच में परमेश्वर का घर है। हम विश्वास करते हैं कि हम ये बचाव धर्म विधियां ग्रहण कर सकते हैं न सिर्फ अपने लिए अपितु अपने पूर्वजों के लिए जो पृथ्वी पर बिना मौके के जरूरी बचाव धर्म विधियों में भाग न ले पाए। हम विश्वास करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के लिए धन विधियां कार्य प्रतिनिधि बनकर कर सकते हैं उसी पवित्र मंदिर में। हम विश्वास करते हैं कि भविष्यवक्ता और परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा हमें अतिरिक्त धर्मशास्त्र मिलता है। जुटती गवाही की बाइबल में घोषणा की गई कि यीशु मसीह ही संसार का उद्धार करता है। हम इन बातों का ज्ञान है।
It is called the Church of Jesus Christ because he stands at the head. It is his church. And all these things are
क्योंकि उसका चर्च है और ये सब चीजें हम विश्वास करते हैं कि
as good and sincere as other religions and churches are, none of them have the authority to provide the ordinance of salvation that are available in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We have a knowledge of these things, but do we believe them?
हमें इन बातों का ज्ञान है, लेकिन क्या हम इसे विश्वास करते हैं? यदि ये बातें सच हैं, तब हमारे पास आशा का महानतम संदेश है, और सहायता करें कि संसार कभी इसे जाने। उन बातों पर भरोसा करना हमारे लिए अनंत गौरव की बात है, और उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। विश्वास करें, हमें सुसमाचार को हमारे सिर से लेकर अपने हृदय में लाएं। यह हमारे लिए संभव किया है कि महज सुसमाचार की धारा में बहते चले जाएं, क्योंकि यह अपेक्षित है, या क्योंकि यह संस्कृति है जिसमें कि हम पले बड़े हुए हैं, या क्योंकि यह एक आदत है। शायद हम में से कुछ ने अनुभव नहीं किया हो कि राजा बेंजामिन के लोगों ने महसूस किया उनके दमदार संदेश के बाद, और वे सब एक स्वर में चिल्लाकर बोले, हाँ, हम उन सब बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आपने हमसे कहा है, और हम जानते हैं कि ये सब उचित और सत्य है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु की आत्मा ने हमारे अंदर अर्थात हमारे हृदय में एक महान परिवर्तन कर दिया है, जिससे कि हम शैतान के कार्य को नहीं करेंगे, परंतु सदैव सच्चे अच्छे कार्य ही करेंगे। हम सभी को अपने दिलों को खोजने की जरूरत है और वास्तविक परिवर्तन की, ताकि हम संसार के तरीकों पर अब कभी ना चलने की कामना करें, परंतु परमेश्वर के। सच्चा परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो कि लंबा समय लेता है, और विश्वास का अभ्यास करने के लिए इच्छा पूर्ति सम्मिलित होती है। यह आता है धर्मशास्त्रों को खोजने से, ना कि इंटरनेट से। यह आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार होते हैं। परिवर्तन आता जब हम चारों तरफ सेवा करें। यह गंभीर प्रार्थना करने से, लगातार मंदिर जाने से, हमारे परमेश्वर की दी गई जिम्मेदारियां को ईमानदारी से निभाने से आता है। यह अनुकूलता है और दैनिक प्रयासों को मांगता है। मैं अक्सर पूछती हूँ, वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं हमारे युवा जिसका आज सामना कर रहे हैं? मैंने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूँ तब से अब तक बड़ी और हवादार महल का प्रभाव उनके जीवन में। अगर मॉर्मन की पुस्तक विशेषकर हमारे आज के दिनों के लिए लिखी गई थी, तब यकीनन उसकी हमसे बड़ी लेही के जीवन के वृक्ष के दिव्य दर्शन के संदेश के उपयुक्त को छोड़ नहीं सकते, और उन सब का जो उन पर उंगली उठाकर बड़ी और हवादार महल से उपहास करने के प्रभाव से। मेरे लिए अति शोकजनक था उनका वर्णन, जिन्होंने वैसे ही अपने तरीके से लड़ाई लड़ चुके अंधकार के बीच सीधे और सक्रिय मार्ग की लोहे के छड़ को कसकर पकड़ के रहने, अपने उद्देश्य की ओर पहुंचने और जीवन के वृक्ष के शुद्ध और स्वादिष्ट फलों को चखने की शुरुआत कर दी थी। फिर धर्मशास्त्र कहता है कि वे लोग जो बड़ी और हवादार महल के, उनका पहनावा अत्यंत ही शोभायमान था, और वे खिले उड़ाने के भाव से उनकी ओर उंगली उठा रहे थे जिन्होंने उस वृक्ष का फल खाने में भाग लिया था, और उन फलों का स्वाद लेने के बाद उनके अपहास के कारण लज्जित होकर वर्जित पथों पर चलकर खो गए। यह आयत वर्णन करती है हम में से उनका जिनके पास यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में पहले से है, चाहे हम उसमें जन्मे हों या अंधकार के धुन में बीच से लड़ते हुए अपना रास्ता पाते हैं। हमने वह फल चख लिया है जो अधिक मूल्यवान और इच्छित है और अनंत जीवन लाने की योग्यता रखता है, सभी उपहारों में सबसे बड़ा है। हमें सिर्फ अपना उत्सव मनाने की आवश्यकता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है जो हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, या वे जो शंका उत्पन्न का आनंद लेते हैं, या वे जो गिरजा के मार्गदर्शकों और सिद्धांत में गलतियां ढूंढते हैं। यह एक विकल्प है जो हमें रोज लेना है, शक के ऊपर विश्वास को चुनना। एल्डर एम रसल बैलर्ड ने हमें से निवेदन किया है, नाव पर रुके रहें, अपनी बचाव जैकेट का प्रयोग करें और दोनों हाथ से पकड़े रहें। प्रभु के सच्चे गिरजा के सदस्यों के रूप में हम वैसे ही नाव पर हैं। हमें दृढ़ता से जाने की जरूरत नहीं है। फिलॉसफी द्वारा दुनिया के सत्य को, जो कि हमें सहारा, सहायता और निर्देशन देगा जीवन की समस्याओं से सुरक्षित निकलने की, वह हमारे पास है। जैसे ईथन की मां ने अपने लंबे समय से रुख विश्वास को जांचा था और परेशानी के छोरों में आत्मनिर्भर होकर घोषित किया था, मैं भी विश्वास करती हूँ, वैसे हम भी कर सकते हैं। मैं साक्षी देती हूँ कि हमारी सदस्यता प्रभु के राज में अमूल्य है। मैं गवाही देती हूँ कि आशीषें और शांति प्रभु ने हमारे लिए जमा कर रखी है, जो आज्ञाकारी और विश्वासी के हद से बहुत आगे कुछ है जिसे मानव मन समझ सके। मैं आपके साथ ये गवाही छोड़े जा रही हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
A few years ago, our daughter and son-in-law
पहले मेरी बेटी और दामाद से एक प्राथमिक शिक्षा के 5 सक्रिय साल 4 साल के लड़कों को सीखने के लिए पूछा गया। हमारी बेटी टीचर और दामाद एनफोर्स पद पर थे। अपना बेहतर देकर शांत वातावरण बनाकर सुसमाचार को बच्चों को शिक्षा की दी थी। एक विशेषकर अशांत कक्षा के दौरान एक चंचल लड़के को कई बार चेतावनी देने के बाद हमारे दामाद ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। कमरे से बाहर जाने के बाद और छोटे बच्चे उसके व्यवहार के बारे में बात करने के लिए और उसके अभिभावक को ढूंढने की आवश्यकता थी। छोटे बच्चे को दामाद के सामने रुका वह एक शब्द बोला, अपने हाथ पर पैर उठाए और बड़ी भावुकता से बोला, कभी कभी मुझे यीशु मसीह के बारे में सोचना कठिन हो जाता है। हमारी नश्वरता की यात्रा से जैसे आनंददायी, जैसे हमारी भावी नियति बन सके और जैसे प्राण पोषण यात्रा के रूप में साबित कर सके। हम सब परेशानियों और दुखों के रास्ते में साथ चलते हैं। एल्डर जोसेफ वर्थलेन ने सिखाया था, दुख का पहिया घूमते हुए अंत में हम में से प्रत्येक की ओर इशारा करता है। एक समय या दूसरे पर हर किसी को दुखों का अनुभव करना पड़ता है, कोई इससे बचा नहीं है। प्रभु अपने ज्ञान में दुखों या उदासीनता से बचाते नहीं हैं, इसलिए हमारी इस शांति से रास्ते पर यात्रा करने की योग्यता है लंबी तरह से निर्भर करता है, चाहे या नहीं। हमको भी यीशु के बारे में सोचने की कठिनाई होती है। मन की शांति, अंतरात्मा की शांति और दिलों की शांति को हमारी योग्यता से नहीं समाप्त कर सकते। परेशानियों, दुखों या हृदय पीड़ा को निर्धारता कर रोक सकते हैं। हमारी ईमानदारी के अनुरोध के बावजूद हर तूफान अपना रास्ता नहीं बदलता, ना ही दुर्बलता की चंगाई होगी। हम पूरी तरह से सिद्धांत, नियम, भविष्यवक्ताओं, दिव्य दर्शी और प्रकटीकर्ता द्वारा अभ्यास करना समझ नहीं पाते। कई बार हमें शांति का वादा किया गया है, शर्तों के साथ मिलती है। योहन्ना के सुसमाचार में उद्धारकर्ता ने सिखाया था कि जीवन के कलेशों के बावजूद हम अच्छे से उत्साहित हो सकते हैं, हमारे पास आशा हो सकती है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने घोषित किया कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह ने विश्वास उसकी इस संसार में शांति और आने वाले संसार में अनंत जीवन की हमारी शिक्षा की नींव बनाती है। शांति के लिए हमारी खोज सहायता करती है। जीवन के हर चुनौतियों के बीच हमारे सीधे तरीके से हमारे विचारों को उद्धारकर्ता पर केंद्रित करने के लिए है, जो कहता है, मुझ में सीखो, मुझसे मेरे वचनों को सुनो, मेरी आत्मा की निर्मलता में चलता है और मुझे मुझ में शांति मिले, मैं यीशु मसीह हूँ। सुनना और चलना, तीन नियम वचन है। पहला, मुझसे सीखो। हम यशायाह में पढ़ते हैं, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। मंदिर की बढ़ती संख्या धरती पर निशान छोड़ती है। हम यीशु मसीह को और उसकी पिता की योजना में भूमिका से सीखते हैं। संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में और हमारी शांति के स्रोत में रूप में। अध्यक्ष मॉनसून ने सिखाया था, संसार चुनौती भर और कठिन स्थान है जीने के लिए। जैसे आप और मैं परमेश्वर के पवित्र भवन में आते हैं, वहाँ जैसे हमारे बनाए अनुभवों को स्मरण करते हैं और हम अधिक कठिनाइयों को उठाएंगे और हर लालच से उभरेंगे, इस पवित्र स्थल में हम शांति पाएंगे। सटेक सम्मेलन के दौरान साउथ अमेरिका में कार्य दिए गए थे। मैं एक दंपति से मिला जो हाल ही में हुई उनकी शिशु की मौत पर दुखी थे। यह एक सम्मेलन के सकारात्मक के दौरान जहां पर पहली बार ब्रदर तुमेरी से मिला और घटी को जाना था। जैसे हम बात करते हैं, वह बांटता है। वह सिर्फ न केवल अपने बेटे की मौत से दुखी है, अपितु वह टूट गया है कि वह उसे दोबारा नहीं देख सकेगा। उसने समझाया कि गिरजा के नए सदस्य के रूप में उन्हें एक बार मंदिर जाने के लिए पैसे बचाएं। अपने बच्चे के जन्म से पहले और दंपति को और दोनों बेटियों को मुहर बंद हुए करें। उन्होंने फिर से वर्णन किया कैसे वे मंदिर वापसी के लिए पैसे बचाएंगे, लेकिन वे अपने छोटे बेटे को नहीं ले जा सकते हैं मुहर बंद करने के लिए। गलतफहमी की संभावना को पहचान कर मैंने समझाया कि वे सचमुच में अपने बेटे को फिर से देख सकेंगे यदि वह लगातार विश्वासी रहेंगे मुहर बंद धर्मविधियों के कारण, जिससे वह उसकी पत्नी और बेटियों से काफी है उसके बेटे के साथ बंद होने के लिए जो अनुबंध में जमा था। अनोखी बात है उनसे पूछना कि यह वास्तविक में सच है, और मैं पुष्टि करता हूँ कि यह सच है। वह तब पूछता है कि मुझे अपनी पत्नी से बात करनी होगी जो दो हफ्ते से उसके बेटे की मौत से दुखी है। रविवार दोपहर सम्मेलन के बाद मैं सिस्टर थिमरी से मिला और इस उत्तम सिद्धांत को उसे भी समझाया था। उसका दर्द अभी ताज़ा था, लेकिन अब आशा की एक किरण उसने रोते हुए पूछा, क्या मैं अपने बेटे को अपनी बाहों में ले सकूंगी? क्या वह सदा के लिए मेरा होगा? मैंने उसे सुनिश्चित किया कि जब तक वह अनुबंध का पालन करेंगी, मंदिर में पाए जाने वाले मुहरबंद समर्थ को रखेंगी, भावित तौर से यीशु मसीह के अधिकार के कारण वह सच में उसे उसके बेटे को फिर से उसकी बाहों में ले सकेंगी। सिस्टर थम्पी उसके पुत्र की मौत के बाद, हृदय टूटने के बाद हमारी सभा के आभार के आंसुओं के साथ और शांति से चली गई। मंदिर की पवित्र धर्मविधियों के कारण उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के द्वारा संभव किया गया था। हम हर बार मंदिर में जाते हैं उस समय में जो हम सुनते करते और करते हैं, प्रत्येक धर्मविधियों उसमें हम भाग लेते हैं और प्रत्येक अनुबंध जिसे हम बनाते हैं यीशु मसीह सुस्पष्ट करता है। हमें शांति का एहसास होता है, उसके वचन को सुनते हैं, उसके आत्मा को महसूस करते हैं और उससे बात करें और हम जानेंगे शांति को जिस तुम कहीं और नहीं पा सकेंगे। दूसरा, मेरे वचनों को सुनो, चाहे मेरा स्वयं की आवाज से या मेरे सेवकों की आवाज से, यह समान है। आदम के दिनों के और युगों से आज के भविष्यवक्ता थॉमस स्पेंसर मॉन्सन प्रभु अपने आधिकारिक प्रतिनिधि से बात करता है। वे जो उसके भविष्यवक्ता के द्वारा दिए जाते हैं, वे सुरक्षा और शांति पाएंगे। मॉर्मन पुस्तक में हमें बहुत से निम्न भविष्यवक्ता सलाह और भविष्यवक्ता के साथ खड़े होने के महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। लेही का जीवन के वृक्ष के दिव्य दर्शन के अध्यक्ष शामिल है मिलता है। बड़े महल में कभी भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसकी खुली खिड़की से आता शोर और पथभ्रष्ट करता था, उपहास करते हैं और हमारे दिन से अधिक स्पष्ट है। इस छंद में हम दो मुंह के लोगों को पढ़ते हैं और महल से आते शेर का जवाब देते हैं। आयत 23 में हम पढ़ते हैं, और मैंने भी चारों ओर जब दृष्टि दौड़ाई तब उस जलयुक्त नदी के दूसरी ओर एक बहुत बड़े महल को देखा। वह महल लोगों से भरा था। वह खिली उड़ाने के भाव से उनकी ओर उंगली उठा रहे थे, फल खाने में भाग लिया और उन फलों का स्वाद लेने वाले उनके उपहास के कारण लज्जित होकर वर्जित पथों पर चलकर खो गए। आयत 33 में हम पढ़ते हैं, दूसरों का जिनका जवाब विभिन्न था, उपहास करने और उज्जवल लज्जित महल से आ रहे थे। लेही ने समझाया कि वे जो महल के अंदर थे तिरस्कार युक्त ढंग से उंगली उठाए कि हम लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक मूल फर्क है, बीच में वे जो शर्मिंदा है गिर गए और खो गए, और जिन्होंने महल से आते उपहास को सुना नहीं था, भविष्यवक्ता के साथ खड़े थे। वे वाक्य मिलते हैं, पहला स्वाद लेने के बाद और दूसरा फल खाने के बाद। पहला सम्मुख वृक्ष के पास पहुंचा, कुछ समय के लिए भविष्यवक्ता के साथ खड़ा हुआ, लेकिन फल को सिर्फ चखा था। पूरा खाने के द्वारा उन्होंने महल को उपहास कर उन्हें प्रभावित करने की अनुमति दी थी। भविष्यवक्ता से दूर जाकर और वर्जित पथों पर चल वे खो गए। इसके विपरीत वे जिन्होंने चखा और धीरे धीरे चल कर गए, वे जो लगातार फल खाते रहते, ये महल के आते उल्हाड़ को नजरअंदाज करते। भविष्यवक्ता के साथ खड़े और सुरक्षा और शांति के साथ वह आनंद लेते थे। हमारा प्रभु है और उसके सेवकों से की गई प्रतिज्ञा अधूरी नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो हम अपने अमूल्य को छोड़ देते उनके लिए जो हमारी शांति को नष्ट करते हैं। जैसे हम प्रभु को सुनते, उसके अधिकृत सेवकों के द्वारा हम पवित्र स्थान पर खड़े और हिल नहीं सकते हैं। विपत्तियां कपटी समाधान देती है, जो कि जबकि प्रदान करती हुई प्रतीत होती है, परंतु हमें और दूर कर देती है। शांति जिससे हम ढूंढते हैं वह धोखा देती है, जो कि आलस्य का दिखावा करते हैं और मूल रूप से सुरक्षित करते हैं। जैसे बड़ा महल गिर जाएगा, जब सब नष्ट हो जाएगा, वह उसकी चार दीवारी में शांति खोजते हैं। सच्चाई प्राथमिकता के गीत में मिलती है। वर्ड ऑफ प्रॉफिट, कीप द कमांडमेंट, इन दिस देयर इज सेफ्टी एंड पीस। तीसरा, मेरी आत्मा की विनम्रता से चलें। इसलिए हम रास्ते से भटक जाते हैं, उद्धारकर्ता हमें वापस आने और उसके साथ चलने का निमंत्रण देता है। यह निमंत्रण यीशु मसीह के साथ चलने का निमंत्रण है, उसके साथ गतसमनी में होने और गतसमनी से कलवरी और कलवरी से स्वर्ण गुफा जाने का। यह निमंत्रण देखने और उसके महान प्रायश्चित बलिदान को लोग लागू करने का जो अकेले पहुंचते हैं। जैसे यह अनंत है, यह पश्चाताप करने का निमंत्रण है, उसके शुद्धि की शक्ति के पास आने का और उसके प्यारे फले हाथों को पकड़ने का। ये निमंत्रण अशांति है। हम सब महसूस करते हैं कि कभी कभी अपने जीवन में दर्द और पीड़ा का उल्लंघन करने का पाप के साथी है। यदि हम कहें कि हम में से कुछ पापी नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यद्यपि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, और जैसे हम यीशु मसीह के प्रायश्चित को लागू करते हैं और सच्चे पश्चाताप के द्वारा हम अपने साथ उसके साथ चलते हैं, तो भी हम में से की नई उजाले को जाएंगे। भले ही हम दोषी होने की भावना में दबे हों, हमें शांति की प्राप्ति होगी। छोटे आलमा को उसके पापों को मानने के लिए मजबूत किया। जब प्रभु के दूत भेंट करने के लिए आया, उसने उसका वर्णन इन शब्दों में किया, मेरी आत्मा को मेरे सभी पापों की यंत्रणा वे अत्यधिक झंझोर दिया। हाँ, मैंने अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही करते हुए और उसकी आज्ञाओं का पालन न करते हुए देखा। इतने ही गंभीर उसके पाप थे और आजमाइश के बीच में वह बोलता रहा। मुझे यह भी स्मरण हुआ कि मेरे पिता ने लोगों से भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत के पापों के पश्चाताप के लिए आएगा। तब मैंने अपने मन से पुकारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करें। जब मैंने यीशु मसीह को के पुकारा, तब कहीं जाकर मैं अपने पापों के प्रति क्षमा प्राप्त कर सका। लेकिन सुनो, मैंने उसको पुकारा और मैंने आत्मा शांति पाई। आलमा के समान हम भी अपनी आत्मा की शांति पा सकते हैं। जैसे हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उसकी चंगाई की शक्ति को अपने जीवन में लागू करते हैं। शांति हमको खोजने की जरूरत कमाने से अधिक है। इससे करने को के लिए कार्य की जरूरत है, उससे सीखने की, उससे उसके वचनों सुनने की और उसके साथ चलने की है। हमारे पास वो काबिलियत नहीं है जो कुछ हमारे पास आसपास हो रहा है रोकने की, परंतु हम रोक नहीं सकते। ऐसे शांति को प्राप्त करने के लिए प्रभु आसानी से यीशु मसीह के सोचने में दें। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह मार्ग और सच्चाई और शांत जीवन में ही है, मैं ही हूँ, और यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ आमीन।
On a signal from the conductor.
परिचालक के निर्देश पर कलीसिया खड़े होकर गायक मंडली के साथ मिलकर गाएगी। Rejoice, the Lord is King. संगीत के बाद हम एल्डर टी डी क्रिस्टोफर्सन की क्विंटन एल कुक 12 की परिषद के प्रेरितों के से सुनेंगे। फिर गायन मंडली प्रेस फॉरवर्ड सेंस गाएगी।
यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां वार्षिक महासम्मेलन है।
I speak today of fathers.
मैं बात करता हूँ पिताओं के बारे में.
Fathers are fundamental in the divine plan.
पिता दिव्य योजना में मुख्य काम करते हैं.
For those who are striving to fill
उनके लिए जो इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.
Fathers is not to shame or discount anyone.
पिता होना एक महान कार्य है और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और वो पिता का की भूमिका कर सकते हैं. आज अमेरिकी समाज में पिता के कार्य पर ज्यादा जोर नहीं है. बहुत परिवार हैं जिनमें पिता नहीं है.
Many others are not especially opposed to it, nor are they especially committed to it.
और कई पिता जो होते हैं वो कार्य में इतना भाग नहीं लेते.
As a church, we
believe के रूम में हम विश्वास करते हैं पिताओं में और उस पिता में जो अपने परिवार को पहले रखता है. पिताओं को अपने परिवारों पर को संभालना चाहिए. हम विश्वास करते हैं कि माता और पिता एक साथ परिवार के लिए जिम्मेदार हैं. हम विश्वास करते हैं कि पिता का एक खास कार्य है. कुछ लोग पिताओं का कार्य अच्छा समझते हैं सामाजिक रूप से, ताकि वो अच्छे सिटीजन बने और पिता के रूप में भी कार्य करें माता के अलावा. बच्चों को पिताओं की जरूरत होती है. अब ये सच्चा है, हम जानते हैं कि पिता बनना इससे बहुत अधिक ज्यादा है. पिताओं की भूमिका शुरुआत से शुरू है, स्वर्ग के पिता के से शुरू हुई. सिद्ध पिता का कार्य होता है ताकि हम प्रभु के तो काम करें. अब वो जो उसके बच्चों की खुशी की वो देखता है. अब वो स्वर्गीय पिता की तरह हम उसकी तरह काम करने की कोशिश करनी चाहिए हमें. हमें एक जिम्मेदारी दी गई है. इसमें हमारी दुर्बलताएं भी निकलती हैं, पर इससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल सकता है. हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमें उसका इकलौता पुत्र दिया ताकि उसके द्वारा हमें हम उद्धार पा सके. ईसा ने कहा कि इससे ज्यादा किसी के पास इतना ज्यादा प्यार नहीं है कि एक आदमी दूसरे के लिए अपना जीवन दे दे. पिता ये प्यार दिखाते हैं अपने परिवारों में जिससे वे परिवार की सेवा करते हैं. पिता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उनके बच्चों का मन और दिल उसने स्वर्गीय पिता की ओर मुड़ाना. पिता ये दिखा सकता है कि वफादारी क्या हो सकती है. इससे पिता लोग अपने बच्चों को खुशी और शांति का मार्ग सिखा सकते हैं. पिता जो धर्मशास्त्र उनके बच्चों को सिखाता है उससे वो उन्हें परमेश्वर का शब्द बताते हैं. अपने बच्चों को सिखाना पिताओं का खास कार्य है. और जो पिता लोग उनके बच्चों को स्वर्गीय पिता के सिद्धांत नहीं सिखाते और बपतिस्मे का सिद्धांत नहीं सिखाते और पवित्र आत्मा के दिन के बारे में नहीं सिखाते, वो ठीक नहीं करते. वो बच्चों को ठीक कार्य करने के लिए भी सिखाना चाहिए. सिडनी जी रिग्डन और फ्रेडरिक जी विलियम्स जो पीड़ितों में से थे, उन्हें कहा गया था कि उन्हें उनके बच्चों को सिखाना चाहिए और वो कार्य ठीक से नहीं कर रहे थे और इस वजह से शैतान का उनके ऊपर काबू आया था। पिताओं को स्वर्गीय पिता का कायदा सिखाना चाहिए। सामरिस ने सिखाया क्योंकि उसने याकूब में उसका बयान दिया और उसने पिताओं को आज्ञा दी कि उसके बच्चों को वो सिखाए ताकि वो स्वर्गीय पिता को जान पाए और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को भी वो सिखा पाए। प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। सुसमाचार सिखाना एक माता और पिता का एक साथ कार्य है, पर वो पिताओं से आशा करता है कि वो उसमें पहला भाग लेंगे। याद रखना चाहिए कि जो हर दिन दैनिक बातें होती हैं बच्चों के साथ, वो भी महत्वपूर्ण है सिखाने में। प्रभु अपेक्षा करता है कि उनके लिए वो एक सही भूमिका निभाएं ताकि उनसे वो सीख पाए। जब मैं 12 साल का बच्चा था, मेरे पिता सिटी काउंसिल के लिए खड़े थे। उसने बड़ा इलेक्शन के लिए काम नहीं किया, पर उसके पास मैं था, मेरे भाई थे। उसने उसके पिता के रूप में हमारे पिता के रूप में उसकी भूमिका की वजह से उसे वोट देने के लिए कहा। मेरा दिल अभिमान से भर गया। मुझे आश्वासन मिला और मैं उसके कदमों में चलने की आशा करता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी मिसाल था। नियंत्रण और ठीक करना भी सिखाने का कार्य है, पर बच्चों को स्कूल करने में क्रोध के साथ नहीं करना चाहिए, पर प्यार से और बच्चों से प्यार से उसे जब हम स्कूल करते हैं तब उसके बाद प्यार दिखाना चाहिए अधिक, नहीं तो वो बच्चे तुम्हें तुम्हारा विरोधी सब मानेंगे। डिसिप्लिन जो है सजा देने से ज्यादा है, उसमें प्यार भी दिखाना चाहिए। हर सब बच्चों को अपने पिताओं पर अधिकार है कि वो उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी करें। उनके लिए शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए पिताओं को परिवार से दूर जाना पड़ता है, पर ये कार्य करने से हम परिवार को संभाल सकते हैं। इससे इसका मतलब यह नहीं कि हम कार्य में खो जाएं और परिवार को भूल जाएं और जवाबदेही माँ को क्यों पर छोड़ दें। राजा बेंजामिन ने सिखाया कि तुम तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं छोड़ोगे, ना तुम सहोगे कि वो स्वर्गीय पिता के नियम को तोड़ें, पर तुम उन्हें प्यार सिखाओगे, स्वर्गीय पिता के बारे में सिखाओगे। कुछ पिता रहते हैं जो अपने बच्चों को संभालना नहीं पाते, पर उनके पूरी कोशिश करने के बाद भी वो पूरे कार्य पिता के पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि मौत या कुछ और स्थितियों की वजह से बाधा आती है। उसमें हमें जब मुमकिन सहायता देनी चाहिए। माता पिता का ये प्यार दिखाना बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये उनके पारिवारिक जीवन का आधार है। पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो परिवार को संभाले। हम उनका आदर करते हैं जो ये कार्य धैर्य और कुर्बानी के साथ करते हैं। ये जानना चाहिए कि प्रभु ने परमेश्वर ने उसके बेटे को दूसरे पिता को सौंपा था। जैसे ईसा बड़ा हुआ वैसे वो विवेक में बढ़ा, पर मौत की वजह से कभी कभी कुछ परिवारों में पिता नहीं होते। कुछ के पास पिता हो गए जो शारीरिक रूप से हैं वहाँ पर परिवार में कार्य नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं कि और अच्छा बनो और परिवार को संभालो। और कुछ पता होते हैं जो अपनी पत्नियों से सच में प्यार करते हैं, पर कुछ होते हैं जो इसका ख्याल नहीं करते। बच्चे जिनका पारिवारिक कार्य अच्छा कार्य नहीं देखते, वो स्वर्गीय पिता का कार्य पूरा नहीं करते। तुम वो युग बन सकते हो जब जिसमें पिता का कार्य तुम पूरा कर सकते हो। स्वर्गीय पिता के उदाहरण के अनुसार जवान आदमियों, पहचानो उस भूमिका को जो तुम निभाओगे पिता के रूप में। इसके लिए तुम अपने स्कूल में पढ़ाई करो, क्योंकि चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या किसी और पाठशाला में हो, इससे तुम उस क्षमता को पाओगे जिससे तुम अपने भावी परिवार को संभाल पाओगे। और सीखो कि तुम अपने पिता से अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। कभी कभी वो कार्य अपने पिताओं के साथ करने करो। ऐसा जीवन जियो कि तुम जब पिता बनोगे आप अपने शादी में पवित्रता लाओगे। आने वाली पीढ़ी से हम कहते हैं कि तुम अपने पिता को जहां भी मानते होगे, आपका मन मनाओ कि तुम उसका आदर करोगे और तुम्हारी माँ का भी आदर करोगे। याद करो कि जॉन ने जैसे पिता के बारे में कहा था, मुझे और कुछ खुशी नहीं मिली कि मेरे बच्चे सच्चाई में चलते हैं। बच्चे जब सच्चाई में चलते हैं ये सबसे बड़े आदरपूर्ण बात है पिता के लिए। गिरजे के पिताओं से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे पिता बनो। हम आगे बढ़ के ये कार्य पूरा करें। अपने बारे में ज्यादा न सोचते हुए बच्चों के बारे में पहले सोचो। हमारे कमियों के बावजूद हम पिता का कार्य पूरा कर सकते हैं अच्छी तरह से। मुझे आश्वासन मिलता है एक कहानी से जो मैंने कुछ साल पहले सुनी थी। जब मैं जवान था मेरा परिवार एक कमरे के घर में रहता था। मैं खटिया पे सोता था और मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी काम करने के लिए निकलता था और मेरे बच्चों को मैं तकिए ठीक करता था और उन पे चद्दर बिछाता था। मैं बच्चा जब था वो पिता को ये करते हुए देखते हुए मैं शर्मिंदा हुआ और उसके में मैं ये सोचता था कि वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। वो प्रार्थना करते थे कि मुझे अच्छा दिन मिले, पर वो मेरे साथ सारा दिन नहीं रह पाता था क्योंकि उसे काम करना पड़ता था। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पिता क्या कर रहे थे। इतनी सुबह सुबह मेरे ऊपर प्रार्थना करता था। उसके बाद मुझे पता पड़ा कि उसका मेरे ऊपर कितना प्यार था। कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्मरण हुआ। जब मेरे खुद के बच्चे हुए तब मैं भी उनके सोते हुए उनके लिए ऊपर प्रार्थना करता था। अल्मा ने सिखाया उसके बेटे के बारे में, देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि मसीह निश्चित आएगा और वो आएगा अच्छी बातें करने के लिए। और मेरे बेटे इस सेवा के लिए आपको भी बुलाया गया है ताकि दूसरे लोगों को सच्चाई सीख पाए और वो अपने बच्चों को भी वो सिखा पाए। ये सेवा है पिता की। स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीर्वाद दे ये कार्य करने में इस मसीह के नाम, आमीन।
The rolling forth of the Lord's plan of salvation during
प्रभु की उद्धार की योजना समय की पूर्णता इस युग के आगे बढ़ते हुए समझना समझ से बिल्कुल परे है।
ये अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन द्वारा इस महासम्मेलन के दौरान चार नए मंदिरों की घोषणा से स्पष्ट होता है। जब अध्यक्ष मॉन्सन ने 1963 में प्रेरित नियुक्त हुए थे संसार में केवल 12 कार्यशील मंदिर थे। प्रोवो शहर मंदिर केंद्र के समर्पण के साथ अब 150 में है, अब 154 हो जाएंगे जब घोषित मंदिर समर्पित हो जाते हैं। यह हमारे लिए विनम्रता से आनंद मनाने का कारण है। 180 वर्ष पहले आज के दिन 3 अप्रैल 1836 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ और ओलिवर कॉटरी को एक शानदार दिव्य दर्शन दिखा था। यह उस मंदिर के समर्पण के ठीक एक हफ्ते पहले हुआ था। उस दिव्य दर्शन में उन्होंने प्रभु को मंदिर में मंच के ऊपर खड़ा हुआ देखा। अन्य बातों के अलावा उद्धारकर्ता ने उनसे कहा था, मेरे सभी लोगों के हृदय आनंदित हों जिन्होंने अपने बल से इस घर को मेरे नाम से बनाया है, क्योंकि देखो मैंने इस घर को स्वीकार किया है और ये मेरा नाम यहाँ रहेगा और इस घर में मैं अपने आप को लोगों को दया में प्रकट करूंगा। इस पान अवसर पर एलिया सहित प्राचीन भविष्यवक्ता प्रकट हुए थे जिन्होंने मंदिर विधियों की आवश्यक कुंजियां सौंपी थी। हमें आनंद की कुछ अनुभूति है जो इस पीटो इक्वाडोर जिम्बाब्वे और ब्राजील पेरू में जो होने वाले हैं जहां घोषणा हुई थी। इसके साथ ही जो थाईलैंड में एक वर्ष पहले हुआ था जब यहां मंदिर की घोषणा हुई थी, बहन शैली सीनियर तत् के थाईलैंड मिशन अध्यक्ष डेविड सीनियर की पत्नी ने अपने परिवार और मित्रों को एक ईमेल भेजा था कि अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने इस मंदिर की घोषणा को सुनने के बाद 12 घंटों का जागना और बहुत से खुशी के आंसू बहे थे। उन्होंने अपने मंदिर सहायकों को रात 11:30 बजे फोन किया और उन्हें बताया था। सहायकों ने प्रचारकों को फोन किया। बाद में पता चला कि पूरे मिशन के लोग बीच रात में जाकर अपने बिस्तरों पर उछल रहे थे। बहन सीनियर ने मजाक में परिवार और मित्रों को बोला था, कृपया मिशनरी विभाग को इसे मत बताना। थाईलैंड में सदस्यों के गहन आत्मिक प्रतिक्रिया उतनी ही प्रभावशाली थी जितना विश्वास है कि जहां ये नए मंदिरों की घोषणा की गई है वहां भी हृदयों और घरों में आत्मिक तैयारियां हुई हैं और स्वर्ग के संतों को लोगों को तैयार किया गया है। बहन सीनियर थाईलैंड में के पास कुछ हाथ के आईने उनके व्यक्तिगत निर्देश के लिए बने थे, विशेषकर बहनों के साथ। आईने में मंदिर बना हुआ था जिस पर लिखा था, स्वयं को मंदिर में देखो। जब लोग आईने में नजर डालते तो वे स्वयं को मंदिर में देखते। सीनियर ने जांचकर्ता और सदस्यों को उन्हें अपने आप को देखने में मंदिर में देखने और इस लक्ष्य को बनाने के लिए रहन सहन में जरूरी बदलाव करना और आत्मिक तैयारियां करना सिखाया था। इस सुबह हम में से प्रत्येक के लिए मेरी चुनौती है, जहां कहीं भी हम रहते हों स्वयं को मंदिर में देखें। अध्यक्ष मॉन्सन ने बताया है, जब तक आप प्रभु के घर में नहीं जाते और वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही सभी आशीषों को प्राप्त नहीं करते, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है जो यह गिरजा आपको देना चाहता है। सभी आशीषों को प्राप्त नहीं करते। इस गिरजे के सदस्यता की अति महत्वपूर्ण और सर्वोच्च विषयों आशीषों को हम मंदिर में ही पा सकते हैं। आज संसार में धार्मिकता की कमी के होते हुए भी हम पावन पवित्र समय में रहते हैं। स्नेही और अभिलाषी हृदयों से भविष्यवक्ताओं ने सदियों से हमारे समय की व्याख्या की है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने पुराने नियम में ओबदिय्याह और नए नियम के पत्रस दोनों का उल्लेख करते हुए मृतक के लिए बपतिस्मा प्रदान करने के परमेश्वर के महान उद्देश्य और सियोन पर्वत पर हमारे उद्धारकर्ता बनने के अवसर को पहचाना था। प्रभु ने हमारे लोगों को उन्नत किया और साधन और भविष्यवक्ता का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, ताकि हम जीवित और मृतक दोनों के लिए अपनी मंदिर की जिम्मेवारियों को पूरा करने में दलेरी से भाग लेते रहे। यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार के कारण हम जीवन के उद्देश्य, उसके बच्चों के पिता की उद्धार की योजना, उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान और स्वर्ग के संगठन में परिवारों की मुख्य भूमिका को समझते हैं। अपने पूर्वजों के लिए पारिवारिक इतिहास की पावन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए बड़ी हुई मंदिरों की संख्या, उन्नत तकनीक का होना इस संपूर्ण इतिहास में सर्वोत्तम आशीषित महान कार्य बनाता है। मैं हमारे युवाओं और उनके पूर्वजों की सूची बनाने और खोजने के लिए मंदिर में बपतिस्मा और पुष्टिकरण का कार्य करने के असाधारण विश्वसनीयता से आनंदित होता हूं। आप सचमुच में सियोन में पर्वत पर घोषित किए गए उद्धारकर्ता हो। हम मंदिर के लिए कैसे तैयार होते हैं? हम जानते हैं कि धार्मिकता और पवित्रकरण मंदिर की तैयारी के आवश्यक भाग हैं। सिद्धांत और अनुबंध के खंड 97 में लिखा है, और जितना मेरे लोग मेरे प्रभु के नाम के घर का निमन करेंगे, इसमें से किसी भी अशुद्ध वस्तु को नहीं आने देंगे, ताकि यह अशुद्ध ना हो, मेरी महिमा उसमें बनी रहेगी। मंदिर की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए 1891 में गर्जे के अध्यक्ष प्रत्येक मंदिर स्तुति पर अदाक्षर करता था। वह जिम्मेवारी बाद में धर्माध्यक्षों और स्टेक अध्यक्षों को दी गई थी। अब हमारी महान इच्छा है कि गर्जे के सदस्य मंदिर स्तुति के लिए योग्य जीवन जिए। कृपया मंदिर को एक दूर या शायद ना पूरा होने वाले लक्ष्य के रूप में ना देखें। अपने धर्माध्यक्षों के साथ कार्यशील रहते हुए बहुत से सदस्य अपनी सभी धार्मिक जरूरतों को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं, यदि ये योग्य होने और गलतियों को पूर्ण रूप से पश्चाताप करने का संकल्प लेते हैं। इसमें शामिल है स्वयं को क्षमा करने की इच्छा और पावन मंदिर में प्रवेश करने के लिए अयोग्य होने की तौर पर हमारी कमजोरियों को और पापों पर ध्यान न देना। उद्धारकर्ता का प्रायश्चित परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए किया गया था। उसकी मुक्ति दिलाने वाला बलिदान उन सबके लिए न्याय की मांग को पूरा करता है जो वास्तव में पश्चाताप करते हैं। धर्मशास्त्र से बहुत खूबसूरती से बताते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका स्मरण नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धर्मिकता के नियमों को जीवन जीकर आप अपने आप को और अपने परिवार को खुशियां और संतुष्टि और शांति देते हैं। सदस्य वर्षक और युवा दोनों अपनी योग्यता का स्वयं प्रमाणित करते हैं जब वे मंदिर स्थितियों के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। अनिवार्य आवश्यकता पिता परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु मसीह और उसके सुसमाचार का पुनर्स्थापना और पवित्र आत्मा की सेवकाई की अनुभव की हमारी गवाही को आगे बढ़ाना है। मंदिरों की आशीषें अनगिनत हैं। मंदिर की मुख्य आशीषें उत्कर्ष की विधियां हैं। सुसमाचार योजना उत्कर्ष के बारे में है और परमेश्वर के साथ पवित्र अनुबंधों को बनाने और इसका पालन करना इसमें शामिल है। सिवाय बपतिस्मे और पुष्टिकरण के लिए ये विधियां और अनुबंध मंदिर में जीवित के लिए संपन्न और स्वीकार किए जाते हैं। मृतक के लिए सभी मुक्ति दिलाने वाली युद्धियां अनुबंध मंदिर में स्वीकार किए जाते हैं। ब्रिगम यंग ने सिखाया था, मानव परिवार के उद्धार के लिए ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसे करने में प्रभु ने उपेक्षा की हो। जो कुछ भी उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए किया जा सकता है, उनकी निर्भरता के बिना उसे उद्धारकर्ता में और उसके द्वारा पूरा किया है। गिरजे के मार्गदर्शक हमारे आराधना स्थलों, भवनों, स्टेक, वार्ड, परिषद, गिरजा सहायक संस्थाएं, मिशन आदि संगठन का करते हैं। अनंत प्रभु की अनंत परिवारों को केवल मंदिर में ही संगीत किया जाता है। यह स्पष्ट है कि जिनके हृदय टूटे हुए हैं और आत्माएं पश्चातापी हैं, उन्हें सच में अपने पापों का पश्चाताप किया है, प्रभु को पूर्ण रूप से उसके पवित्र में स्वीकारे है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेता। एक बहुमूल्य बात मुझे मंदिर के बारे में प्रिय लगती है, जो वहां जाते हैं उनमें धन संपत्ति प्रतिष्ठा या पद या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। परमेश्वर के सामने हम एक समान हैं। हर कोई सफेद वस्त्र धारण करता है, जो बताता है कि हम शुद्ध और धार्मिक लोग हैं। सब प्रेमी स्वर्गीय पिता के योग्य बेटे और बेटियां होने की इच्छा अपने हृदयों में लिए एक साथ बैठते हैं। जरा विचार करें, संपूर्ण विश्व की स्त्रियां और पुरुष पवित्र मंदिरों में उपलब्ध पान विधियों और अनुबंधों के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लौट सकते हैं, अनंत रूप से एक हो सकते हैं। वे सुखद पावन मुहरबंदी कक्ष में जाते हैं, जो कभी सभी मंदिर योग सदस्यों को उपलब्ध है। इन मंदिरों बनाने के बाद वे स्वयं को मंदिर के आईनों में देख सकते हैं, जो आमने सामने लगे होते हैं। मंदिर आईनों में एक साथ आगे और पीछे प्रतिबिंब ऐसे लगते हैं मानो अनंत रूप से फैले हुए हैं। ये प्रतिबिंब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सारी पिछली पीढ़ियों के बारे में विचार करने में मदद करते हैं। ये हमें पावन अनुबंधों को पहचान करने में मदद करते हैं, जो हमें अपने आने वाली सभी पीढ़ियों से जोड़ते हैं। ये अद्वितीय रूप से विशेष है और यह तब आरंभ होता है जब हम स्वयं को मंदिर में देखते हैं। अध्यक्ष हॉवर्ड डब्ल्यू वंटर ने हमें कटलेट मंदिर के महान समर्पण प्रार्थना में प्रभावशाली शिक्षा पर विचार करने की सलाह दी थी। उस प्रार्थना के विषय में जोसेफ स्मिथ ने कहा था कि यह उसे प्रकटीकरण द्वारा दी गई थी। यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसका जवाब हमें व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में और प्रभु के प्रत्येक अधिकार के कारण लोगों के रूप में और हमें उसके पवित्र मंदिर में निरंतर दिया जाता है। परबी के मंदिरों में हमारी सदस्यता का महान प्रतीक स्थापित करने के लिए हमें सिद्धांत और अनुबंध के 109 खंड का और अध्यक्ष हंटर की सलाह का अध्ययन अच्छी तरह से करना होगा। मंदिर आश्रयस्थल धन्यवाद देने, निर्देश, निरीक्षण, समझ और पृथ्वी पर समेश्वर के राज्य के संबंध में यह सब बातों का स्थान भी है। एक ऐसे संसार में जो कि वस्तुतः बेचैनी से भरा है, मेरे संपूर्ण जीवन में यह अमन और शांति का स्थान रहा है। इस पावन संसार में चिंताओं को पीठ छोड़ गाना बहुत अद्भुत होता है। अक्सर मंदिर में जब हम परिवार इतिहास में खोज में लगे होते हैं, हमें पवित्र आत्मा से अनुभूतियां और प्रभाव का एहसास होता है। कभी कभी मंदिर में हम और हमारे पार्क के लोगों के बीच का पर्दा बहुत बारीक हो जाता है। सियोन पर्वत पर उद्धारकर्ता होने के हमारे प्रयासों को अतिरिक्त सहायता मिलती है। बहुत साल पहले मध्य अमेरिका में एक मंदिर में हम हमारे सेवामुक्त जनरल पदाधिकारी की पत्नी ने एक पिता, माँ और उनके बच्चों की मोरबंदी कक्ष में अनुबंधों को प्राप्त करने में सहायता की थी, जहाँ मंदिर के आईने लगे हुए थे। जब उन्होंने विधि समाप्त की और उन आईनों को देखा, उसने ध्यान दिया उसमें एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा था जो उस कक्ष में नहीं था। उसने माँ से पूछा और पता चला कि उनकी एक बेटी मर चुकी थी, इसलिए वह शारीरिक रूप से कक्ष में उपस्थित नहीं थी। मृतक बेटी प्रतिनिधि के रूप में पावन विधि में शामिल हुई थी। पर्दे के उस पार से उपलब्ध कराई गई मदद को कभी भी कम ना समझें। कृपया जानें हम कितनी गंभीरता से चाहते हैं कि प्रत्येक मंदिर योग होने के आवश्यक परिवर्तनों को करें। प्रातः पूर्वक विचार करें, अपने जीवन में कहा है आत्मा के मार्गदर्शन के प्रयास करें और मंदिर का स्वयं जानने के लिए थॉमस अध्यक्ष से बात करें। थॉमस एस मॉन्सन ने कहा है, मंदिर जाने योग्य होने के लिए कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य कोई नहीं है। उद्धारकर्ता हमारे विश्वास उसके गिरजे का प्रमुख अटल कोने का पत्थर है। 2 महीने पहले मुझे हेनरी बियरिंग के साथ सुआ फिजी के पुनर्स्थापन भाग लेने का सौभाग्य मिला था। यह एक विशेष पावन अवसर था। अध्यक्ष आयरन के साहसी और मजबूत आत्मिक अभिव्यक्तियों ने पुनः समर्पण की कार्रवाई को दक्षिण गोलार्ध में आए प्रचंडतम तूफान के बीच संपन्न किया था। फिजी सुआ मंदिर पुनः समर्पण तूफान में शरण स्थल था। अक्सर जब हम जीवन के तूफानों का अनुभव करते हैं तो हम अनंत सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रभु के हाथों को महसूस करते हैं। We witness the Lord's hand in providing eternal protections. The original dedication. 18 June 2000 को फिजी सुवा मंदिर का मूल समापन की अद्वितीय था। जब मंदिर पूरा होने वाला था, संसद के सदस्यों को विद्रोहियों के एक समूह द्वारा बंधक बना लिया गया था। सुवा मंजी फिजी के शहर को लूटा और जलाया गया था। सेना ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी थी। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं चार स्टेक अध्यक्षों के साथ क्वीन एलिजाबेथ के बैरकों में सैनिक अधिकारियों से मिला था। प्रस्तावित समर्पण को समझाने के बाद वे मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित थी। उन्होंने एक छोटे से समर्पण समारोह की सलाह दी जिसमें मंदिर के बाहर कुछ नहीं होगा, जिसमें कोने का पत्थर रखने का समारोह था। उन्होंने जोर दिया कि मंदिर के बाहर कोई भी हिंसा का संभावित शिकार हो सकता है। अध्यक्ष हिंकली ने केवल एक नए मंदिर अध्यक्षता और कुछ स्थानीय मार्गदर्शकों के साथ छोटी समर्पण की अनुमति दी। खतरे के कारण अन्य किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। फिर भी उन्होंने प्रभावशाली रूप से कहा, यदि हम मंदिर का समर्पण करते हैं तो हम कोने का पत्थर रखने का समारोह करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु कोने का पत्थर है, यह उसका गिरजा है। जब हम कोने का पत्थर रखने के समारोह के लिए वास्तव में बाहर गए, कोई गैर सदस्य, बच्चे, मीडिया या अन्य कोई वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन विश्वासी भविष्यवक्ता ने उधारकर्ता के प्रति अपने साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रदर्शन किया था। बाद में अध्यक्ष इंकली ने उधारकर्ता के विषय में बोलते हुए कहा था, उसके समान कोई नहीं है, ना कभी रहा है ना कभी होगा। अपने प्रिय पुत्र के उपहार को परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो, जिसने अपना जीवन दे दिया ताकि हमें जीवन मिले, और जो हमारे विश्वास और गिरजे का प्रमुख अटल कोने का पत्थर है। भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से प्रत्येक उद्धारकर्ता का सम्मान करें और स्वयं को उसके पावन मंदिरों में देखने के लिए जरूरी बदलाव करें। ऐसा करने में हम उसके पवित्र उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और स्वयं को और हमारे परिवार को उन सभी आशीषों के लिए तैयार कर सकते हैं जो प्रभु और उसका गिरजा इस जीवन और अनंत काल में दे सकता है। मैं अपनी दृढ़ गवाही देता हूं कि उद्धारकर्ता जीवित है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
are grateful to the Mormon
Tabernacle. हम धन्यवाद देना चाहेंगे मनोहर संगीत के लिए जो मॉर्मन गायक मंडली ने आज प्रथा प्रस्तुत किया है. इस सत्र के हमारे अंतिम वार्ताकार अध्यक्ष डायट एफ उपट्रॉफ प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार होंगे. उनकी टिप्पणी के पश्चात गायन मंडली इस सभा का समापन ओ दाव रॉक ऑफ आवर सेल्वेशन समापन प्रार्थना. उसके बाद बहन कैरल एफ मकॉन की युवती जर्नल अध्यक्षता का पहली सलाहकार द्वारा दी जाएगी.
Thank you, President Monson, for these wonderful temples again. What a blessing for the church, what a blessing for the membership, what a blessing for these nations which receive those wonderful temples. My dear brothers and sisters, one of
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बचपन की अक्सर याद आने वाली यादों की शुरुआत कुछ ही दूर के हवाई हमले के सायरन के साथ होती है जो मुझे नींद से जगा देता है. उससे पहले एक अन्य स्वर घबरा देने वाला और जहाज के पंखे की गूंज धीरे धीरे बढ़ती हुई जब तक वह हवा को हिला ना दे आती थी, जैसे हमारी माँ ने हमें करना सिखाया था. हम बच्चे अपना तैयार किया बैग पकड़कर बम शेल्टर की पहाड़ी की ओर दौड़ते थे. जैसे जैसे हम तेजी से अंधेरी रात से होकर जाते थे, उस चमकते चमकता फ्लेयर्स को आसमान से गिरता हुआ बॉम्बर्स के लिए निशाना बनाते हुए थे. अज्ञानता से हर कोई इसे क्रिसमस ट्री कहता था. मैं 4 साल का था और मैं विश्व युद्ध की साक्षी हूँ. ज्यादा दूर में नहीं, मेरा परिवार डरसन शहर में रहता था और वो जो वहां रहते थे शायद 1000 गुना जो मैं देखा था के गवाह थे. विशाल अग्नि तूफान हजारों टन के विस्फोटों के कारण डरसन बर्बाद हो गया था. 90% से कहीं अधिक शहर खत्म हो गया था और कुछ थोड़ा ही बचा था, लेकिन उसका मलबा और राख ही रह गया था. थोड़ी ही समय पहले शहर को ज्वेल बॉक्स उपनाम दिया गया था, अब नहीं रहा था. एरिक कंस्टर एक जर्मन लेखक थे, तभी को लिखा था. हजारों वर्षों की उनकी सुंदरता बनी एक ही रात में उसे पूर्ण तरह उजाड़ दिया. मेरे बचपन के दौरान मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था युद्ध की तबाही कैसे अपने खुद के लोगों का नाश करना आरंभ करती है. क्या कभी उससे उभारा जा सकता है? हमारे चारों ओर का संसार पूरी तरह से आशाहीन लगने लगा बिना किसी भविष्य के. कुछ समय पहले ही मुझे ड्रेसडन लौटने का मौका मिला था. युद्ध के स्तर वर्षों बाद 70 वर्षों बाद यही है एक बार फिर से शहर का एक ज्वेल बॉक्स. बर्बादी को साफ कर दिया गया था और शहर की पुनः स्थापना हुई और यहाँ तक सुधारा गया. दौरे के दौरान मैंने सुंदर लूथरन गिरजाघर देखा. फोरन किर्चिया हमारे गिरजे की स्त्री असल में 1700 में बनाया गया. यह ड्रेसडन का एक चमकता गहना था, परंतु युद्ध में इसे मलबे का ढेर बना कर रख दिया था. कई सालों तक यह उसी दशा में पड़ा रहा था. आखिरकार तब तक उसे फ्रिक्शन को दोबारा से बनाने का दृढ़ निश्चय किया गया था. मलबे से इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का संभाल कर और सूची में लगा कर रखा गया और उन्हें दोबारा से निर्माण के लिए यूज किया गया. आज आप अपने इसे काले पत्थरों की बाहरी दीवार को देख सकते हैं. यह दाग इस इमारत का सिर्फ इतिहास का ही नहीं बल्कि आशा की स्मारक की भी याद दिलाता है. राख से नया जीवन का प्रतीक बनाने का एक अद्भुत मनुष्य की कालकृत्य का है. मैंने जैसे ड्रेसडन में इतिहास का चिंतन करता हूँ और सरलता का आश्चर्य करता हूँ और उस पर निर्णय जिन्होंने पूर्ण निर्माण किया जो पूरी तरह से नमस्य हो चुका था, मैंने पवित्र आत्मा के मधुर प्रभाव को महसूस किया. यकीनन मैंने सोचा यदि मनुष्य बर्बाद हुए मलबे और विनाश हुआ शहर को लेता है और एक रोबदार प्रेरणा भर ढांचे का पूर्ण निर्माण कर सकता है जो कि स्वर्ग की ओर खड़ा है. हमारा सर्वशक्तिमान पिता और कितना सक्षम है अपने बच्चों को पुनर्स्थापना करने के लिए जो गिर जाते संघर्ष करते या खो जाते हैं।
Our Almighty Father to restore His children who have fallen, struggled, or become lost.
It matters. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी हमारी जिंदगी बर्बाद हुई हो, ऐसा लगने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने गहरे पाप, कितनी भी कड़वाहट, कितना अकेलापन, बिगड़ा हुआ या हमारे दिल टूटे हो, या तक वे जो आशाहीन हैं, जो निराशा में जीते हैं, जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, वे जिन्होंने शराफत छोड़ दी या परमेश्वर के विरुद्ध तिरस्कार किया हो, को फिर से बनाया जा सकता है। उन कुछ बर्बाद हुए बेटों को बचाएं। ऐसे बर्बाद हुई कोई जिंदगी नहीं है जो दोबारा स्थापित न की जा सके। सुसमाचार की खुशी की खबर यह है कि क्योंकि हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता ने और यीशु मसीह का असीम प्रायश्चित के द्वारा हमें आनंद की अनंत योजना दी है, हम न सिर्फ अपने गिरते हुए स्थान से मुक्ति ही पा सकते हैं और शुद्धता को फिर से स्थापित करते हैं, हम नश्वर कल्पना को भी ऊंचा उठा सकते हैं और अनंत जीवन के वंशज बनते और परमेश्वर की अवर्णनीय महिमा को भी ले सकते हैं। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत उद्धारकर्ता की सेवाई के दौरान उसके समय के धार्मिक मार्गदर्शकों ने यीशु का उन लोगों के साथ समय व्यतीत करने का अस्वीकारा था जिन्हें वे पापी कहते थे। यदि उनको यह ऐसा लगता था वह झेल रहा था, यहाँ तक पाप से भर व्यवहार को माफ कर रहा था, शायद वे भरोसा करते थे कि पापियों की अच्छी तरह से मदद, निंदा, उपहास और उनको शर्मिंदा कर पश्चाताप करने के द्वारा की जा सकती है। जब उद्धारकर्ता ने पहले से जान लिया कि फरीसी और शास्त्री क्या सोच रहे थे, उसने एक साधारण कहानी बताया। तुम में से कौन है जिसने 100 भेड़े हो और उसमें से एक हो जाए, 99 के को जंगल में छोड़कर और एक जो उसको खोजने जाए जो एक खोई हुई है, और जब मिल जाती है वह बहुत आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। सदियों से इस दृष्टांत को परंपरागत रूप से वर्णन किया जाता रहा है, जैसे हमारे लिए एक का खोई हुई भेड़ को वापस लाना और उन तक पहुंचाना है जो खो गए हैं, जबकि यह वास्तव में उचित है। मैं चकित हूं अगर इस में और कुछ अधिक करने को होता। क्या मुमकिन है कि यीशु मसीह का उद्देश्य पहला या सर्वश्रेष्ठ अच्छा गुड़ियारा को काम के विषय में शिक्षा बनाना है? क्या यह मुमकिन है कि वह परमेश्वर का उसके हटीले बच्चों को के प्रति प्रेम की गवाही देता था? क्या यह संभव है कि उद्धारकर्ता का संदेश था कि परमेश्वर जानता है उनको जो खो गए हैं, कि वह उनको उदेड़ना उन तक पहुंचाएगा और उनको बचाएगा? यदि ऐसा है तो भेड़ को इस पवित्र सहायता के योग्य होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या भेड़ को जानने की आवश्यकता है कैसे सेक्सेट्स को उसके आकांक्षा संबंधी को जानकर तालमेल कर इस्तेमाल करना है? क्या इसे जीपीएस के स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी? क्या इसे ऐप बनाने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए जो कि मदद के लिए बुलाया जा सकेगा? क्या भेड़ों को लोगों के द्वारा अच्छे गडेरियों के बचाव में आने का विज्ञापन करने की आवश्यकता होगी? नहीं, सचमुच में नहीं। भेड़ साधारणता से बचाने के योग्य थी क्योंकि वह अच्छे गडेरिया का प्रेम था। मेरे लिए खोई हुई भेड़ का दृष्टांत ही एक अनंत आशा भरा संदेश है और सारे धर्मशास्त्र में हमारा प्रिय उद्धारकर्ता अच्छा गडरिया उसको और मुझे जानता है। वह जानता है कब आप खो गए और वह जानता है कब आप कहाँ हैं। वह आपको दुख को जानता है, वह आपके शांत प्रार्थना को, आपके भय को, आपके आंसुओं को।
Beyond your own control.
इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खो गए हैं, चाहे आपके स्वयं के बारे में चुनाव कारण या आपकी संस्था के अधीन परिस्थितियों के कारण है। फर्क पड़ता है कि आप उसके बच्चे हैं और वह आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपको खोज लेगा, वह आपको अपने कंधे पर आनंद से उठाकर लेगा, और वह और जब वह आपको घर लेकर आता है, वह एक से और सबको कहेगा, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। क्यों हमें क्या करना चाहिए? लेकिन आप सोच रहे होंगे, पकड़ क्या है? सच में मुझे कुछ अधिक करना है, बचाव इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि हमारे सारे बच्चे उसके पास लौटें। वह किसी को भी स्वर्ग के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें नहीं बचाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उसका निमंत्रण साधारण है, मेरी तरफ मुड़ो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसी तरह में हम उसे दिखाते हैं कि हम बचना चाहते हैं। इसे थोड़ा सा विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन निराश ना हो। यदि तुम्हारे पास अभी राई का सा विश्वास नहीं हो सकता, आशा से आरंभ करो। यदि तुम कह नहीं सकते, तुम जानते हो परमेश्वर वह है, तुम आशा कर सकते हो कि वह तुम भरोसों की छाया पर कर सकता है। यह परम करने का पर्याप्त होगा। तब उसी आशा पर काम करें, अपने स्वर्गीय पिता तक पहुंचे। परमेश्वर आपका प्रेम तुम पर पहुंचाएगा और उसका बचाव और बदलाव का काम आरंभ करेगा। समय से परे आप अपने जीवन के में उसके हाथ के होने का पहचान पाएंगे। आप उसके प्रेम का एहसास करेंगे और उसके रोशनी में चलने की इच्छा होगी और उसके मार्ग का अनुसरण कर विश्वास के साथ हर कदम उठा पाएंगे। हम इस विश्वासी के कदमों को आज्ञाकारी कहते हैं। यदि प्रचलित शब्द नहीं है इन दिनों, परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार में आज्ञाकारी विषय को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सारी मानव जाति नियमों के प्रति आज्ञाकारी होने के सुसमाचारों की धर्मवादियों के द्वारा बचाई जा सकती है। जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम विश्वासी होने में भी बढ़ेंगे। पहले मैं एक जर्मन लेखक का संदर्भ दिया, जिसने नष्ट हुए डर्ज़न को दिवगत किया था। उसने इस कहावत को भी लिखा, उसके लिए जो क्रिस्टल भाषा नहीं बोलते हैं, यह अनुवाद है, जैसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है जब तक आप उसके करते नहीं है। आप और मैं अर्थपूर्ण ढंग से आत्मिक चीजों को की बातें करते हैं। हम लोगों को हमारी उत्सुकता के साथ धार्मिक शीर्षकों का बुद्धिजीवी अनुवाद का प्रभावित करते हैं। हम धर्म के विषय में अत्यंत प्रशंसा करते और ऊपर में अपना घर का सपना देखते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास ना बदला जैसे हम जीते हैं, यदि हमारा भरोसा प्रभावित ना हुआ हमारे रोज के निर्णयों से, हमारा धर्म व्यर्थ है। और हमारा विषय यदि मरा नहीं तो यह सचमुच में ठीक नहीं और यह अधिकार खतरे में है। आज्ञाकारी होना जीवन रक्षक का विश्वास है। यदि आज्ञाकारी होने के द्वारा ही कि हम अपनी आत्मा में प्रकाश इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम आज्ञाकारी को गलत समझते हैं। हम उसे देख सकते हैं जैसे उसी के अनंत में, ना के अंत के अर्थ का, या हम आज्ञाकारिता को रूपक हथौड़ा से आज्ञाओं की लोहे की छड़ के विरुद्ध मार कर और लगातार गर्म कर और बार बार पिटने से पवित्रता के भीतर स्वर्गीय कर्णों से जिनसे हम प्रेम करते हैं और आकार लाने का प्रयत्न करते हैं। इस में कोई शक नहीं है, कुछ समय ऐसे होते हैं जब हमें पश्चाताप करने की सख्ती से पुकारने की जरूरत होती है। सच में ऐसे भी कुछ हैं जो सिर्फ इस तरह पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद यह पर भिन्न भिन्न लक्षण हैं जिसकी व्याख्या दी जा सकती है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आज्ञा का पालन करते हैं, शायद आज्ञाकारिता झुकने मरोड़ने और हमारी आत्मा का धड़कना उस चीज के लिए जो हमारी नहीं है, संभवतः इसमें बावजूद यही प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा हम खोजते कि हम वास्तव में कैसे हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, वह हमारा स्वर्गीय पिता है, हम सचमुच में उसके आत्मिक बच्चे हैं, हम देवित्व बहुत कीमती और उच्च निर्मल से बने हैं, और तथापि हम पवित्रता के तत्व को हमारे भीतर लेकर चलते हैं। यह धरती पर हालांकि हमारे विचार और काम उनके साथ जो भ्रष्टाचार अपवित्र और अशुद्धता के साथ उजल जाते हैं, कामुक संसार की धूल और गंदगी हमारी आत्मा को दगादार कर देती है, उसे पहचानने में कठिन बनाता और हमारे जीव जन्म अधिकार और उद्देश्य याद दिलाता है। परंतु यह बदल नहीं सकता कि हम वास्तव में कौन हैं। पवित्र सिद्धांत के हमारी प्रकृति के अवशेष हैं, और क्षण हम चुनते हैं दिलों में हमारे प्रिय यीशु मसीह और उसके प्रेरित करने का और शिष्यता के रास्ते पर कदम रखने का, कुछ अद्भुत घट जाता है। परमेश्वर के प्रेम से हमारे हृदय भर जाते हैं, सच्चाई की रोशनी से हमारे मन भर जाता है, हम पाप करने की चाह से दूर होना शुरू करते हैं, और हम सब कभी भी अंधकार में चलना नहीं चाहते हैं। हम आज्ञाकारिता को एक सजा के रूप में नहीं, अपितु एक आजादी के रास्ते और हमारे पवित्र मंजिल की ओर देखें, और धीरे धीरे भ्रष्टाचार धूल और इस धरती के सीमाएं गिरनी शुरू हो जाती हैं। आखिरकार अमूल्य स्वर्गीय जन की अनंत आत्मा हमारे साथ होकर प्रकट करता है, और अच्छाई की चमक हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। आप बचाव के योग्य हैं। भाइयों और बहनों, मैं गवाही देता हूं कि परमेश्वर जैसे में हम हैं वैसे देखता है, जैसे सच में हम हैं, और वह हमें बचाएगा। हम शायद महसूस करें कि आपका जीवन बर्बादी में है, आपने शायद पाप किया हो, आप शायद डरते, क्रोधित होते, मातम करते या शंका से पीड़ित होते, परंतु वैसे ही जैसे अचगडरिये ने उसकी खोई हुई भेड़ को पाया था, अगर आप सिर्फ अपना हृदय को संसार के उदारकर्ता की ओर उठाएं, वह आपको खोज लेगा, वह आपको अपने कंधे पर लेकर उठाएगा, वह आपको उठाकर घर ले आएगा। अगर नश्वर हाथ पत्थर को बदल सकते और आराधना करने का एक सुंदर घर बना सकते हैं, तब हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें दोबारा से बना सकता और बनाएगा। परंतु यह एक पुनर्स्थापना की से कहीं अलग काम है। उसकी योजना हम कभी जो थे उससे कहीं अधिक हमें बड़ा बनाने की है, महान, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। विश्वास के हर एक कदम के साथ हम शिष्यता का मार्ग लेते हैं, हम अनंत महिमा और आशीष खुशी के आनंद में होगा। यह सिर्फ मेरी गवाही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Thank you. Our Father in heaven, it is with gratitude that
स्वर्गीय पिता आपके आभार के साथ हम इस मिसा भाग में आते हैं. हमने आत्मा को महसूस किया. हम आपका आभार करते हैं इन संदेशों के लिए जो हमने प्राप्त करे हैं आपकी चुने हुए सेवाओं सेवकों से और उनकी प्रार्थनाओं के लिए. हम अति आभार प्रकट करते हैं अपने भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट मॉनसन के लिए. हम उन्हें प्रेम करते हैं और उनका समर्थन करते हैं अपने पूरे मन से और दिल से. हम हेवनली फादर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब ये सभा समाप्त होती है तो आपने इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हम अपने मन में और अपने और उस पर ध्यान दें और उसके अनुसार काम करें कि हम आज्ञाकारी बने जो हमारे लिए अमूल्य हो और हम सच्चे और विश्वासी रहें और जो हमने अनुबंध बनाए हैं और धर्म विधियां की हैं कि हम उसके लिए आपका विनम्रता से धन्यवाद देते हैं. आपके पुत्र आपके संत आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम उसकी उसकी अटोनमेंट के लिए उनके बलिदान के लिए ये सब कुछ हम आपके नाम से मांगते आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन.
This has been a broadcast of the 100
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 186वां वार्षिक महासम्मेलन था. इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे. इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा उपलब्ध कराया गया था. इसका प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया. बिना लिखित अनुमति के इस लेखन की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या उपयोग वर्जित है.